हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे 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 नाम संकीर्तन की जय
हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी
यशोदनंदन ब्रजदन रंगन यमुना तिरावन
यशोदनंदन ब्रजदन रंगन यमुना तिरावन
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे गोपाल हरे राम संकीर्तन की
जय
श्री राधा कुंज बिहारी की
जय
श्री गौर नताय की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंद
हरि हरि वो
ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। आइए आप सबको स्वागत करते हैं भागवत रसमालयम के आठवें अध्याय की कक्षा के लिए। लेकिन पिछले सातवां अध्याय में हमने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था उधर, जिसको आज हम कवर करके आगे जाएंगे, उसको पूरा करके हम आगे जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने पिछले सत्र में सुना होगा अश्वत्थामा पकड़ा गया, लेकिन पकड़ने के बाद अर्जुन लाया उनको द्रौपदी के पास, है ना, उनको दंड देने के लिए। उस समय क्या हुआ वो हमने बताया नहीं है अभी तक, तो वो दिखा देंगे अभी, उधर से चालू करते हैं। करेक्ट। हाँ पढ़िए पढ़िए।
तीनों लोकों के सारे लोग ब्रह्मास्त्रों की सम्मिलित अग्नि से जल बुन गए। सभी लोगों को संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया तो प्रलय के समय लगती है। इस प्रकार सामान्य जीवों की हड़बड़ी और ग्रहों के आसन्न विनाश को देखते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। अश्वत्थामा को कैद करने के बाद अर्जुन उसे सैन्य के पड़ाव में ले जाना चाहते थे। निरर्थक अहिंसा श्रीमद् भागवतम स्कंद 1:7।
निरर्थक अहिंसा बताया जा रहा है। अनेक लोग मानते हैं इस दुनिया में कि हम हमेशा हमारे जीवन में अहिंसा का धर्म को पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हिंसा का भी जरूरत पड़ता है, ये बताते रहे भगवान इधर। क्योंकि एक बार एक बौद्ध गुरु थे, उनके साथ प्रभुपाद जी का चर्चा हुई, तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको, अहिंसा हिंसा दोनों का काम इस दुनिया में होता है अलग अलग समय पर। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि ऐसे कैसे बोलते हैं स्वामी जी, सिर्फ अहिंसा ही अहिंसा चाहिए सब स्थानों में, अहिंसा परमो धर्म ऐसे बोले। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक सरल प्रश्न पूछा, अगर आप सड़क में जाते समय आपके कोई शिष्या है स्त्री, उसके हाथ कोई पकड़ कर खींच रहा है और वो रो रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति को पकड़ कर मारेंगे, नहीं तो पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे? तो अब वो बौद्ध गुरु ने सोचा 2-3 मिनट, बोला कि नहीं कुछ नहीं करूंगा, बोला उन्होंने। तब वो शिष्य रोने लगी, बोले कि क्या गुरु जी, हमारी सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे आप? ऐसे पूछा उन्होंने। तब प्रभुपाद जी हंस पड़े, बोले प्रभुपाद जी देखिए, हिंसा का भी काम होता है इस दुनिया में। कुछ लोग लातों का बुद्ध हैं, उनको दंड दिया देना चाहिए उनको, तब तो सुधरेंगे वो, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। दो शब्द हैं, आप पढ़ेंगे गीता में भी शास्त्र में भी, शास्त्र शस्त्र, सज्जनों के लिए शास्त्र और जो लातों का बुद्ध के लिए शस्त्र, दोनों है। दोनों का धातु एक ही है, शस। शस का मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण करना। शस से आता है शिष्य, शस्त्र शास्त्र, तीनों के धातु एक ही है, शस धातु है। तो वही कृष्ण भी बोलने वाले हैं, बोलेंगे कि सुप्तम बालम जड़म विरतम भीतम प्रपन्नम, ऐसे नाम बोलेंगे। वो बोलेंगे कि जो सो रहा है कोई व्यक्ति, नहीं तो निराविध पानी है कोई, अगर कोई रो रहा है, कोई आपका पांव पकड़ रहा है, कोई भाग रहा है आपसे युद्ध रणभूमि छोड़कर, और कोई विरत हो गया है, उसके बाद रथ नहीं हो, ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको आश्रय ले रहा है उसको मारना नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला कि ये मूर्ख अश्वत्थामा ने क्या किया, सोए हुए बच्चों को मारा उन्होंने, और वो बाल बच्चे भी थे, वृद्ध नहीं थे, वो बड़े नहीं हुए थे, वो छोटे बच्चों को, छोटे लड़कों को मारा इन्होंने। सो भी रहे थे वो, बाल भी थे, निरायुध भी थे, कुछ रथ में नहीं बैठे थे, जागे नहीं थे, सोए हुए अवस्था में थे, है ना। ऐसे बच्चों को मारना महापाप है, तो इसलिए यह व्यक्ति जो अश्वत्थामा, उसको छोड़ना नहीं चाहिए तुमको, ऐसे भगवान ने बोला। पढ़िए।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनों से देखते हुए क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आताताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुल अंगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो।
आताई किसको बोलते हैं? अगर किसी व्यक्ति किसी और दूसरे अपने दुश्मन के घर के ऊपर आग लगाता हो, उनको विष पिलाता हो, उनको मार डालता हो, उनके स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करता हो, तो ये सब लोग आताई हैं। वो दंड के लिए योग्य हैं वो लोग। जिस तरह अपने स्वामी कौन है, उनके अश्वत्थामा के स्वामी दुर्योधन है, उनको भी तृप्त नहीं कर पाया। दुर्योधन कुछ नहीं था, छोटे बच्चों को मार कर आए हो तुम, कितना बड़ा मूर्खता है। पांडवों को तुम मार नहीं पाया, इसलिए बच्चों को मार कर लाया हो। ऐसे बोला। पढ़िए।
भगवान की इच्छा जानना और उसके अनुसार कार्य करना। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1:7-56। यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी।
बढ़िया।
द्रौपदी ने कहा, यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है।
देखिए, अभी से चालू हो रहा है, इधर 40वां श्लोक के बाद आप देखेंगे भगवान ने परीक्षा लिया अर्जुन की। एक परीक्षा, क्या परीक्षा था अर्जुन के लिए, इधर बताया गया 40वां श्लोक में। सो तवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैचद हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। इधर बताया गया कि एवं परीक्षता धर्मम, भगवान ने अर्जुन को एक परीक्षा लिया। क्या है? अर्जुन इसको मारना चाहिए, आतताई है, तुमने वचन भी दिया है द्रौपदी को, इसलिए इसको मार दो, तुरंत तत्क्षण मार दो। लेकिन अर्जुन मार नहीं रहा था उनको, तो भगवान देख रहे थे कि एक परीक्षा ले रहे थे भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का आयोजन अलग ही था कि अश्वत्थामा अभी मारा नहीं जाएगा, इसके बदले में, क्योंकि अगर अभी मर जाता है तो परीक्षित के लिए एक ब्रह्मास्त्र भेजेगा ना, वो कौन भेजेगा, है ना, और एक लीला बचा है ना। इसलिए भगवान के अंदर ही अंदर योजना था इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाहर ही बाहर ऊपर ही ऊपर ऐसे एक परीक्षा लिया अर्जुन को। अर्जुन तुमने गर्दन काट कर लेके जाओ करके बोला ना तुमने, तो गर्दन लेके जाने के बदले तुम उसको उठा कर क्यों लेके जा रहे हो, जिंदा क्यों लेके जा रहे हो, ऐसे भगवान ने पूछा। फिर भी अर्जुन ने भगवान को देखा, बोला कि नहीं नहीं, द्रौपदी से हम अनुमति मांग कर उसके बाद हम इनका गला काटना तो काटेंगे हम, ऐसे बोला उन्होंने। क्यों? वो अश्वत्थामा को देख कर ही उसको तुरंत लगा कि ये मेरे गुरुपुत्र है, इसको वध करूंगा तो गुरु दुखित हो जाएंगे, ऐसे उनके मन में एक विचार आया उसको। साथ साथ उन्होंने सोचा कि द्रौपदी का मत क्या है, वो भी हम सुन लेते हैं। इस तरह सोचकर उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर उधर लेके आया उनके पास, द्रौपदी के पास। इससे परीक्षा में पास हो गया कौन? अर्जुन। कैसे? क्योंकि कृष्ण की इच्छा को समझकर, उनके मन की बात समझकर काम किया उन्होंने। देखिए, चार तरह के शिष्य होते हैं। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी च मध्यमः अदमो अश्रद्धया कुर्यात् न कुर्यात् उच्चरितं पितुः। पहला श्रेणी का शिष्य कौन है? गुरु की मन की बात समझकर काम करता है, बोले बिना। दूसरे श्रेणी का शिष्य कौन है? गुरु जो बोलते हैं शिष्य को, ये कर दो तो कर देता है। तीसरे श्रेणी का शिष्य है, वो अधूरा काम करता है, पूरा मन लगा कर नहीं करता है, थोड़ा करता थोड़ा नहीं करता। चौथा शिष्य जो होता है बार बार बोलने के बाद भी नहीं करता है। ऐसे चार श्रेणी के अर्जुन किस श्रेणी में आते हैं? पहली श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग किस श्रेणी में आना चाहिए? कम से कम दूसरा श्रेणी में आना चाहिए। जो गुरु बोलते हैं करो करके उसको करना चाहिए कम से कम। तो इतने ऊंचे श्रेणी के भक्त था अर्जुन, भगवान की मन की बात समझ लिया, भगवान ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, मुझे परीक्षा ले रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि अश्वत्थामा मारा ना जाए, वो जानता था वो, इसलिए उनको लेकर गया। तो द्रौपदी के पास पहुंचाते ही देखकर द्रौपदी ने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। किसको? अश्वत्थामा को। वो तो खून किया है, आतताई है, महापापी है, पातक पापी है, इसे कोई और पांडव दंडवत नहीं किए उसको, लेकिन द्रौपदी कर रही है, क्योंकि वो देख रही है ये तो गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है, इसलिए वो बोल रही है। द्रौपदी क्या बोल रही है? अगर कोई निरंकुश को बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित करेगा और कुपित करेगा तो वो लोगों की क्रोधाग्नि में हम लोग जल जल जाएंगे। हम राजकुल हैं, हम ब्राह्मणों की श्राप का श्राप प्राप्त करके मिटना जाए, ये पहला बता रही है। इधर नीचे पढ़े, नीचे भीम को
छोड़कर हर व्यक्ति रानी द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर से सहमत था। मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसने गुस्से से कहा। इस कायर ने बिना किसी वास्तविक कारण के और उन्हें लड़ने का मौका दिए बिना हमारे सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया।
ऐसे भीम को बहुत बुरा लगा, ऐसे भीम बोल रहे थे। हाँ।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आताताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे वेदों के आदेश हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं।
ऐसे भगवान ने बोला अर्जुन को,
और भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है।
हाँ, तुमने द्रौपदी को भी वचन दिया है, मुझे भी, मुझे मेरा और भीम का इच्छा है कि इसको तुम मार डालो उसको। तो तब भगवान ने बोला कि ये द्रौपदी जो है, ठीक है, मैं आपको इसमें सिर्फ पिक्चर है, इसमें पूरा नहीं है, श्लोक नहीं है, इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक है, वो दिखाएंगे आपको। ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दिस इज 49th श्लोक। वो बोलती है द्रौपदी, छह कारण बोलती है क्यों उसको मारना नहीं चाहिए। धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचोद्विजाः। हिंदी में पढ़िए।
सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्याय उचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे।
अभी एक एक श्लोक में एक एक चीज बता रही है द्रौपदी, देखिए बताती है। पहले बोल रहे कि वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को हमेशा गुरु जैसे मानना चाहिए, इसलिए छोड़ दो, वो पहला चीज है। दूसरा बोला उन्होंने, देखो इसके पिताजी द्रोणाचार्य ने आपको, आपके मार्शल आर्ट्स जो धनुर्विद्या का टीचर बने आपके, क्या गुरु के पुत्र को कोई मार सकता है क्या? एक न्याय है क्या ये? उनसे इतना सीखा आपने, इतना लाभ प्राप्त हुआ आपको, लाभ अर्जित करने के बाद उनके गुरु के पुत्र को मार देने का ठीक नहीं है वो, ऐसे बोला उन्होंने। और बोला कि जो पत्नी होती है वो पति का आधा होती है, वो ऐसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना हम ऐसे, इसलिए अभी इसका पिता मर गया है, कौन? द्रोणाचार्य, लेकिन माता जिंदा है, इसलिए अपने पति को प्रतिनिधित्व करते हुए इसके माँ अभी भी जिंदा है, इसकी उपस्थिति में इसको मारना ये कृपा नहीं है, क्योंकि अगर इसको मारोगे आप, जिस तरह मैं रो रही हूँ ऐसे ही इसके माँ भी रोएगी। और एक कारण बोला उन्होंने, जो द्रोणाचार्य मरने के बाद ये सती में सहगमन नहीं किया, कौन? कृपी, उनकी पत्नी, कारण क्या है, बेटा जिंदा है इसलिए बेटे के साथ रहने की योजना है उनका। अगर बेटे भी मर जाएगा, अभी पति भी मर गए तो विधवा हो जाएगी, तो अग्नि प्रवेश कर लेगी वो, है वो रह नहीं सकती। और वो उन्होंने बोला कि एक स्त्री का हृदय का दर्द एक स्त्री ही जान सकती है, ऐसे बोला उन्होंने। तो ऐसे बोलकर और ये भी बात बोला उन्होंने, तुम अर्जुन को बोला कि आप एक धर्म निभाते समय दूसरे धर्मों को मत तोड़िए। क्या है, एक धर्म है इसको मारना, लेकिन दूसरा धर्म क्या है, गुरु पुत्र को नहीं मारना। तो ये इसको मारते मारते वो दूसरा नियम टूट जाएगा, इसलिए उसको बोला कि उन्होंने तो मेरे जैसे इसकी मार ना रोना चाहिए, मेरे मुझे उनके हृदय में, मेरे हृदय में अनुकंपा होता है उनके लिए, इसकी माँ के लिए, इसलिए उन्होंने बोला कि इसको छोड़ देना ही अच्छा है। ऐसे उन्होंने द्रौपदी ने 6 कारण बताया। इसको सुनने के बाद राजा धर्मसुतो राज्ञा युधिष्ठिर महाराज ऐसे सर हिला रहे थे, सही बोला द्रौपदी, तुमने माफ कर देना चाहिए, सही बोला, मैं भी मानता हूँ। तभी युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी दोनों मान लिए कि इसको मारना नहीं चाहिए, तो नकुल और सहदेव उनके साइड में जुट गए। अभी कितने हो गए, 4 द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, और दूसरे पक्ष में कौन कौन है, भीम और कृष्ण, वो दो लोग हैं, एक पक्ष में 2, दूसरे पक्ष में 4। तब भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन देखो हम 2 चाहते हैं कि इसको मारो और वो 2 चाहते हैं कि इसको मत मारो, तो तुम ऐसे एक निर्णय लो जिससे हम 6 के 6 सब लोग हम तृप्त हो जाएंगे तुम्हारे इससे कार्य से, ऐसे बोला भगवान ने। तो अर्जुन कुछ क्षणों के लिए सोच रहा था क्या करने से सब लोग तृप्त होंगे, तो ऐसे तब उन्होंने क्या किया, देखिए इधर पिक्चर में, उन्होंने उसके सर के ऊपर एक मणि जो था उसको पकड़कर उसको काट दिया। काटने के बाद तब भीम भी खुश हो गया क्योंकि इसका अपमान हो गया, उसको क्षत्रिय के लिए अपमान, जान से भी प्यारा है, ज्यादा प्यार है उनको, इसलिए बाकी सब लोग खुश हो गए। अभी उसको छोड़ दिया, उसको निकल जा अभी इधर से, एक जानवर जैसे छोड़ दिया, उसकी शोभा चली गई, उसको ऐसे छोड़ दिया उसको, तो इसे सब लोग खुश हो गए। लेकिन ये इसमें सीखने वाले एक महत्वपूर्ण सीख है, भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, परम भगवान हैं, फिर भी निर्णय उन्होंने नहीं लिया, क्यों, जब भक्तों के बीच में मतभेद होता है भगवान सोचते हैं कि इसको सावधानी से सुलझाना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते कि मैं परम भगवान हूँ सब लोग मेरे बात सुनो, ऐसे नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, भगवान खुद ही अपने आप को भक्तों की इच्छा के अनुसार मोड़ते हैं, इसलिए भगवान ने बोला द्रौपदी की मत सुनो, और इनका भी मत सुन लो, युधिष्ठिर महाराज का भी, नकुल सहदेव का भी सुन लो, मेरा भी सुनो, भीम का भी सुनो, सब लोगों का सुनकर तुम निर्णय लो। इससे हम लोग क्या सीखते हैं, भक्तों के समूह में भी भक्तों के सब मतों को सुनकर उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए, वो एक चीज सीखते हैं। और दूसरा चीज है, परम सत्य भगवान सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, अगर वो एक निर्णय लेते हैं तो कोई उसको मना कर सकता है क्या, फिर भी वो निर्णय नहीं लेते, इसका मतलब क्या, हम वरिष्ठ से वरिष्ठ भी क्यों ना हो, बाकी सब कनिष्ठ से कनिष्ठ क्यों ना हो, फिर भी हर एक को सोचने के लिए मौका देना चाहिए। जैसे प्रभु रामचंद्र जब विभीषण आया था आकाश मार्ग से 3-4 असुरों के साथ, वो रामचंद्र जी की सेना में जुड़ना चाहता था वो, तब भगवान रामचंद्र ने निर्णय नहीं लिया, उन्होंने पूछा सुग्रीव को क्या करना चाहिए, सुग्रीव बोला कि उनको पकड़कर नीचे लाओ मार दो तत्क्षण, और नल को पूछा, महिंद को पूछा, अंगद को पूछा, अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बोला कि इसको विश्वास नहीं करना चाहिए, दुश्मन का आदमी है, मार देना चाहिए उसको, लेना नहीं चाहिए, लेकिन हनुमान एक ही व्यक्ति था बोला कि ये आपका भक्त है, मैंने पहले भी देखा हूँ कि आपका नाम लेता है, ये निष्कपट है, निष्पाप है, आप ले सकते हैं, ऐसे बोला। तो अंत में सब बंदरों ने, वानरों ने पूछा भगवान को, आपने हम सब का मत पूछा, लेकिन आपका मत प्रकट नहीं किया है, आपका मत क्या है। तब भगवान बोले स्वकृदपि प्रपन्नो यम तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि ये तत्प्रतम मम। मेरे एक व्रत है कि जो भी मेरे ऋषि चरणों में शरणागत है उसको त्यागता नहीं हूं मैं। एक भी बार शरण लेकर कोई प्रार्थना करेगा हे भगवान तवह अस्मि, मैं आपका हो गया हूं, तो उनको मैं शरणागत भक्तों को शरण दे देता हूं। इसलिए अभी विभीषण आया है तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको शरण दूंगा। ऐसे भगवान ने शरण दिया उनको। तो क्या क्यों बोला मैंने आपको, आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं लेकिन लेते नहीं हैं, अपने भक्तों को मौका देते हैं। प्रभु रामचंद्र भी निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं लेकिन वानरों को पूछते हैं। तो इस तरह हम लोग को अगर कुछ समस्या को सुलझाना हो, भगवान ने हमको दो कान दिया है और एक मुख दिया है, उसका मतलब है निर्णय हमें दूसरों को सुनना ज्यादा चाहिए निर्णय बोलने के पहले, ये बात है। ये लीला से हम सीखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। पढ़िए अभी।
अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक क्रांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदा हीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है।
टाइटल पढ़िए, टाइटल।
भक्तों के बीच मतभेदों का निवारण।
अभी कौन कड़ा है भगवान के निकट तलवार लेकर हाथ में? वो भीम है, वो भीम है। और द्रौपदी मना कर रही है, ए मारो मत, मारो मत, ऐसे मना कर रही है। तो द्रौपदी के बाजू में कौन है हाथ में तलवार लेकर? वो अर्जुन है। वो सर मुंडवा रहा है उसके, हैं सर, ये बाल बाल मणि मणि को मुंडवा रहा है, निकाल रहा है वो। यही अलग अलग कारण बताती है। तो आप लोग समय मिलते समय देख सकते हैं आप, हैं? इसको टाइटल पढ़िए।
भक्तों के बीच मतभेदों का निवारण। द्रौपदी के अश्वत्थामा को क्षमा करने के कारण।
करेक्ट। अभी धर्म्यम कौन था? ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। न्यायम, हमें गुरु द्रोण के पुत्र को मानना नहीं चाहिए। निर्वलीकम, गौरवशाली परिवार के सदस्य सदा पूज्य हैं, वंदनीय हैं। सकरुणम, और सहानुभूति, मैं नहीं चाहती कि कृपी को पुत्र खोने का दुख हो। और महत, क्षत्रिय कुल के लोगों को ब्रह्म कुल के लोगों के श्राप प्राप्त नहीं करना चाहिए ऐसे। तो इस तरह पांच कारण बताती है वो। पढ़िए।
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हमारे प्रत्येक चयन पर आधारित है। या तो मन और भावनाओं के वशीभूत कार्य करें या आध्यात्मिक बुद्धि से कार्य करें। स्त्री का दयालु स्वभाव।
इधर एक महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बोलते हैं इस तात्पर्य में, 42वां श्लोक में प्रभुपाद बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष में क्या फर्क है। स्त्री बहुत कोमल स्वभाव वाली होती है, इसलिए उसके उसको संस्कृत में वाम स्वभावम बोलते हैं, वाम स्वभावम। इतना मासूम होने के कारण, बोली बाली होने के कारण कभी स्त्री लोग धक्का, कभी कभी धोखा खाती हैं, कभी कभी है। इसके विरुद्ध पुरुष लोग जो हैं वो लोग जैसे व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदी,
भेद भी कहते हैं,
भेदभाव मतलब डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअली इधर बताते हैं कि पुरुष लोग कुछ लोगों को कोई धोखा नहीं दे सकता आसानी से, उनके अंदर लॉजिक, उनका लॉजिक काम करता है, स्त्री का इमोशन काम करता है। तो उस्ताद प्रभा जी बोलते हैं भारत में आजकल अगर कोई व्यक्ति जनेऊ पहना हो हा? उसको स्त्रियां देखकर तुरंत झुकती है, उनको नमस्कार करती है ऐसे, लेकिन पुरुष लोग नहीं करते। वो देखेंगे ठीक है जनेऊ पहना है लेकिन काम क्या कर रहा है, वो देखेंगे ना क्या ब्राह्मण का काम कर रहा है क्या, वो देखेंगे। जैसे एक बार कलकत्ता में प्रभुपाद जी ने देखा एक ब्राह्मण था, वो गंदा धोती पहना था और जनेऊ भी था, काला काला जनेऊ था उसके शरीर में, और टांग खींच रहा था, मालूम आपको हाथ से खींचा जाता है ना, टंगा टंगा बोलते हैं उसको, है हाँ, उसको खींच रहा था वो, टांगा टांगा बोलते हैं उसको। तो एक परिवार वाले देखा पति पत्नी ने, तो पत्नी बोल रही थी देखो वो ब्राह्मण है जनेऊ पहना है, आओ हम नमस्कार करते हैं उसको जाकर। तो दोनों जाकर नमस्कार कर रहे थे और वो भी टांगा पकड़ते पकड़ते आशीर्वाद भी दे रहा था वो उनको। तो प्रभुपाद देख रहे थे, प्रभुपाद हंस पड़े, बोले कि ये ब्राह्मण भी नहीं और वो लोग मूर्ख लोग हैं इसलिए इससे आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये टांगा खींचने वाले कैसे ब्राह्मण होगा वो, लेकिन पहना है जनेऊ लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है, ऐसे बोला उन्होंने। तो बुद्धिमान लोग समझ पाएंगे कि कोई सिर्फ एक जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, 25 पैसा का कोई भी लेकर पहन सकता है, लेकिन ब्रह्म कर्म होना चाहिए उसमें। ऐसे ऐसे भीम भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे, लेकिन द्रौपदी जो होती है, द्रौपदी ने ऐसे सोचा उन्होंने कि प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके कोमल स्वभाव के कारण उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन बाद में व्यक्ति क्या किया मालूम है आप लोगों को, करेक्ट है ना, बाद में वापस और एक बार क्या किया, ब्रह्मास्त्र, और एक ब्रह्मास्त्र चलाया उसने। उसको मन में कृतज्ञता ही नहीं था द्रौपदी के ऊपर, सोचा नहीं उसने कि इन्होंने मेरा जान जिंदा छोड़ दिया, मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, हुआ क्या इसे, नहीं हुआ। वही बताया जा रहा है कि स्त्रियां कभी कभी, इसलिए हम देखते हैं कभी कभी भारत में क्या होता है, जो भारत में ही नहीं, भारत में ऐसे नियम था कि स्त्री को घर के बाहर नहीं छोड़ते थे, घर के अंदर ही रहती थी, अपने माता पिता के सुरक्षा में रहती थी, विवाह होने के बाद पति के सुरक्षा में रहती थी, और उसके बाद बड़े होने के बाद पति अगर संन्यास ले लिया हो तो बेटे के सुरक्षा में रहती थी ऐसे। लेकिन आजकल के जमाने में जमाना बदल गया, सब लोग बोलते हैं स्त्री भी पढ़ाई करती है, दफ्तर खाने में जाती है, इसका मूल कारण है पुरुष, क्योंकि पुरुष लोग सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं लिया स्त्रियों के लिए, और सही ढंग से अपने जिम्मेदारी को निभाए नहीं पुरुष लोग। तो आजकल हम देखते हैं स्त्रियों को भी काम करके पैसा अर्जित करना पड़ता है, और पुरुष जो हो शराब पीता है, नहीं तो घर को संभालता नहीं है ठीक तरह से ऐसे, इसलिए दुनिया बिगड़ गया बहुत। क्योंकि हम अनेक बार देखेंगे आप सीता माता को धोखा देकर मारीच ने क्या क्या, एक हिरण का रूप धारण करके प्रभु रामचंद्र जी को भटका कर लेके गया ना, उसके बाद रावण के नाटक देकर सीता मोहित हो गई, उनको सीता माता को लेके गया लंका में, ये एक उदाहरण दे सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्त्री जो होती है उनके अंदर करुणा ज्यादा ही होता है। एक बार जयंत नाम के इंद्र के पुत्र सीता माता बैठी थी और प्रभु रामचंद्र उनके गोद में ऐसे लेटे सो गए थे ऐसे, हैं एक नदी के पास वो लोग जल क्रीड़ा करके सो गए। उसके बाद तब एक काक आ गया, काक नहीं था वो, इंद्र का पुत्र था, लेकिन काक का रूप धारण करके आकर इधर कंधे पर बैठ गया, किसके, सीता माता के, हाँ, बैठकर अपने चोंच से उनके स्तन के ऊपर आक्रमण करने लगा। तो सीता रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो प्रभु रामचंद्र उठ गए, तुरंत उठते ही काक दूर जाकर बैठ गया। तब प्रभु रामचंद्र ने देखा कि सीता के स्तन में आक्रमण किया है किसने, मुड़कर देखा कौन, देखा काक को देखा, तुरंत अपने हाथ में दो तृण लेकर शक्तिपात करके ऐसे भेज दिया उसको, वो काक को काटने के लिए गया, काक भागते हुए गया अपने पिताजी के पास इंद्र के पास, इंद्र बोले इधर मत आओ निकल जा, कोई बचा नहीं पाएगा तुमको, भगवान से तुमने विरुद्ध किया है, तो इधर से उधर उधर से इधर भटक भटक कर अंत तक तो उधर ही वापस आ पहुंचा। लेकिन आने के बाद सीता माता ने विनती किया भगवान को छोड़ दीजिए इसको, गलती हो गया इसके हाथ से, माफ कर दीजिए, देखिए उसको ही उनको ही नुकसान, उनको ही गलत व्यवहार किया है, फिर भी माँ उसको माफ करने के लिए बोलती है, और कम से कम उसकी जान मत लीजिए, ऐसे बोल रही थी वो। तो उसके बाद सीता माता ने उनको बोला कि अरे प्रभु रामचंद्र के पांव पकड़ो, तुम पांव में गिरोगे वो अब तुमको माफ कर देंगे। उनका आदत ऐसा है, उनके शिव चरण में झुकने वाले को कभी मारेंगे नहीं। ये कहा कितना मूर्ख था, इसको दंडवत भी कैसे करना मालूम नहीं था, ऐसे दंडवत करने के पहले ऐसे सो गया, ऐसे गिर गया। तो माँ ने उनको पलटी किया, बोला कि तुम ऐसे झुको, सर डाला उनके पांव में। तो इससे आप देख सकते हैं कि माँ सीता के अंदर कितना करुणा भावना है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि करुणा अच्छा है, लेकिन धोखा नहीं खाना चाहिए हमको इस दुनिया में। धोखा देना भी नहीं चाहिए, धोखा खाना भी नहीं चाहिए, वो सीख सिखाते हैं। कभी कभी इस दुनिया में देखा जाता है, कोई स्त्री कॉलेज में पढ़ती है, कोई लड़का आता है बड़े कार में, वो सोचते है वाह इतना बहुत धनी दिख रहा है ये लड़का, लेकिन वो बाड़े में लेके आया है गाड़ी जस्ट दिखावा करने के लिए। और वो इसकी स्त्री को लेके जाएगा होटल में, उसको खिलाएगा पिलाएगा और उसको वीरे दे देगा और भाग जाएगा। तो ये गर्भवती हो जाएगी, रोएगी, उसके बाद अस्पताल में जाकर अबॉर्शन करेगी। ऐसे भी हम सुनते हैं ना, ऐसे होता है, क्योंकि कभी कभी कोई लड़का प्ले बॉय बोलते हैं अंग्रेजी में, मीठा मीठा बात करता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेगा वो ऐसे दर्जनों स्त्रियों के साथ संबंध रखता है। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे बदमाश लोग हैं। इसलिए स्त्रियों को माँ बाप की सुरक्षा में रहना चाहिए। जैसे देवहूति जो थी, उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि अच्छे पुरुष हैं, विवाह करने के लिए योग्य हैं। नारद मुनि से सुना था उन्होंने अच्छी अच्छी चीज, लेकिन विवाह करने के लिए खुद साहस नहीं था उनके पास, अपने माँ बाप को बोल दिया। उनके माँ बाप लेके गए उसको जंगल में, माँ बाप की इच्छा के अनुसार ही विवाह हुआ, शतरूपा और स्वयंभू मनो, मनमानी नहीं किया देवहूति कुछ भी। इस तरह स्त्रियों, क्योंकि स्त्रियों को इस तरह का के विषय में गलत निर्णय लेने की संभावना है, इसलिए वो मनमानी नहीं करना चाहिए, माता पिता के बात मानकर ही चलना चाहिए, ये बात है। तो अभी हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज कुरुक्षेत्र के पढ़िए, टाइटल पढ़िए।
कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद की घटनाओं से आगे बढ़ते हैं।
आठवां अध्याय शीर्षक
कुंती महारानी की प्रार्थनाएं तथा परीक्षित की रक्षा।
उसमें क्या क्या है विषय सूची?
विषय सूची व्याकुल पांडवों को सांत्वना।
अभी क्या हुआ, ये जो कुरुक्षेत्र, ठीक है भगवान, अभी ठीक है श्लोक पढ़कर उसके बाद समझाएंगे। अभी अगले आठवां अध्याय में प्रवेश करते हैं। हाँ पढ़िए।
महारानी कुंती द्वारा
वही है, दुखी पांडवों को सांत्वना, परीक्षित की गर्भ में मृत्यु से रक्षा, और कुंती देवी की प्रार्थना है, और युधिष्ठिर महाराज का विलाप। चार चीजें इस अध्याय में देखेंगे, कितना हम पूरा कर पाएंगे आज। वो सुत गोस्वामी बैठे हैं, शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बारे में। अभी पहले पार्ट में क्या आता है, अभी सब पांडव शोक में हैं, क्यों, कारण क्या है? हाँ उनके ही पुत्र, पांच पुत्र है ना, पुत्र चल बसे तो जरूर शोक का मग्न होंगे, क्योंकि एक भी बचा नहीं, पांच के पांच थे, सब मर गए, तो सब शोक से तप्त थे, तो संतप्त थे। तो भगवान ने सोचा कि हाँ ऐसी परिस्थिति में इनको थोड़ा सहारा की जरूरत है। तो भगवान ने क्या किया, अकेले सिर्फ उनके साथ नहीं गए बच्चों के दहन के लिए इत्यादि, अनेक ऋषियों को भी साथ में लेकर गए भगवान। क्यों आप पढ़ेंगे उस श्लोक में, अभी शुरुआत के दो तीन श्लोक हैं अध्याय के, करेक्ट। सो तब वाच अत ते संपरेतानाम स्वानाम उदकमिच्छताम दातुम सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। पढ़िए अनुवाद पढ़िए।
सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं।
स्त्रियां आगे गई, पुरुष पीछे गए, सब लोग गंगा में जाकर नहाने के लिए और कुछ पूजा विधियां पूर्ति करने के लिए गए, तो भगवान भी गए, उनके साथ गए हैं। इधर बताया है, इधर कौन कौन गए उधर बताया है, तीसरा श्लोक में बताया है, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सब लोग रोते हुए गए। तो चौथा श्लोक बताया है, सांत्वयामास मुनि भेर हत बंधोन सुचार पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्न प्रतिक्रियाम।
सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकावर्त जनों को ढाढ़स बंधाया।
हाँ, इसलिए कृष्ण अकेले नहीं गए उनके साथ, ऐसे अनेक लोगों को शांत करना आसान नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों को भी साथ में लेके गए ताकि साथ में हम लोग उनको शांत करेंगे। अभी बता रहे हैं भगवान, देखो काल के प्रभाव, देखो जो भी हर एक तकदीर में लिखा होना है वही होगा। वैसे तो भगवान बदल सकते थे किसी का भी तकदीर, लेकिन भगवान जानते हैं कि हर एक चीज जो होता है दुनिया में, भगवान उसके पीछे मर्म क्या है भगवान जानते हैं। और पांडवों को भी भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, जो हो रहा है उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है, इसलिए उन्होंने शिकायत नहीं किया कुछ वो लोग है ना, और भगवान उनको शांत किया उनको। ऐसे पांचवा श्लोक, साधयित्वा जात शत्रु स्वयं राज्यम कितवैर हृतम गातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्श क्षतायुषः। पढ़िए,
धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था, भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु शीर्ण हो चुकी थी।
तो इस तात्पर्य में प्रभुज बताते हैं पांच चीज, अच्छे अच्छी चीज, ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारे समुदाय के लोगों को सिखाते हैं वैदिक संस्कृति, भगवान की भक्ति इत्यादि, और गाय बछड़ों की ये सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध पीकर हमारे मस्तिष्क मजबूत बनता है शास्त्र पठन के लिए। और आगे बताते हैं स्त्रियों को पतिव्रता रखना चाहिए समाज में। क्यों? स्त्रियों से की योनि से ही सबका जन्म होता है, अगर किसी स्त्री का योनि शुद्ध रहता है तो बच्चे भी बहुत धार्मिक बनते हैं। अगर कोई स्त्री दूषित हो जाती है, उसकी सुरक्षा नहीं हुआ, तो बच्चे वर्ण संकर बनते हैं, वर्ण संकर बनकर सारे दुनिया को, दुनिया में हलचल मचा देंगे वो। इसलिए स्त्रियों को बचा कर उनको पतिव्रता रखने से समाज में अच्छे अच्छे संतान पैदा होते हैं। और चौथा बताते हैं बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताते हैं गर्भाधान संस्कार से लेकर उससे उनको अच्छा संस्कृति प्राप्त होता है, बच्चों को उनके अच्छे संस्कृति के द्वारा भविष्य में जाकर बड़े नेता बनेंगे वो बच्चे, दुनिया के लिए भलाई करेंगे वो। और पांचवा, बूढ़े लोगों को भी अच्छा सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए बूढ़ों को। क्यों? ताकि अपने मन को भगवान के स्मरण में अंतिम काल में रखते हुए वो लोग शरीर छोड़ने के लिए हमें सुविधा प्रदान करना चाहिए। इस तरह अगले जन्म उनके लिए भविष्य बड़ा उज्जवल होगा उनको, करेक्ट है ना? ऐसे बता रहे हैं। इस तरह बाबा जी बोल रहे हैं कि हरेक को ये पांच श्रेणी के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना हरेक राजा का कर्तव्य, ऐसे बताते हैं। तो इसके बाद छठा श्लोक में बताया गया है, कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला तीन बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने किया, और ऐसे करने से क्या हुआ, वो इंद्र से भी ज्यादा मशहूर हो गए वो। इंद्र ने कितना किया यज्ञ? 100। युधिष्ठिर ने कितना किया? लेकिन ये इंद्र से भी ज्यादा उनका यश फैल गया। कारण क्या बताया गया? क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे बताते हैं। कृष्ण के प्रभाव से वो इतने महान बने वो, ऐसे बताते हैं। करेक्ट। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं निकलूं इधर से अभी, क्योंकि द्वारका वासियां मेरी राह देख रहे हैं। ऐसे जब उन्होंने सोचा था मन में, तभी कुछ हुआ, देखा उन्होंने उतरा, भागती हुई आ रही थी चिल्लाते हुए। वो बैठ गए थे वो रथ में, निकल नहीं वाले थे वो, लेकिन उतरा भागती हुई आई, रोती हुई आई और ऐसे श्लोक बोला, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। धन्यवाद बढ़िए।
उत्तरा ने कहा, हे देवादि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।
देखिए, ये हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, एक जीव दूसरे जीव से ईर्ष्या करता है इस दुनिया में, दूसरे एक जीव दूसरे जीव को तकलीफ देता है। हम जंगल में देखते हैं एक बाघ शेर या हिरण के पीछे भाग कर मारता है उसको, इसी तरह गांव में शहर में भी देखते हैं कुत्ते कभी कभी दूसरे कुत्तों को फाड़ देता है, मार देता है, नहीं तो काटता है, ऐसे हम देखते हैं। तो इस दुनिया में एक जीव दूसरे जीव को क्लेश देता ही है जानवर इसमें, लेकिन मनुष्यों में भी देखा जाता है कि लोग दुश्मन भावना वैरी भावना को रखते हुए दूसरे लोगों को दुख देते हैं। अभी अश्वत्थामा ईर्ष्या के कारण उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये अंतिम शिशु है पांडव के वंश में, अगर इस शिशु को मार दिया जाए तो पांडवों के वंश आगे बढ़ नहीं सकता, बंद हो जाएगा। इस योजना से उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र भेजा था ईर्ष्या के कारण ऐसे। तो भगवान ही एकमात्र आश्रय है भक्तों के लिए। खास करके प्रभु जी बोलते हैं इधर तात्पर्य में, देखिए एक नया नया जन्मा शिशु छोटा होता है ना, माँ बाप उसको ज्यादा ही प्रेम देते हैं, संभालते हैं उसको अच्छा, लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा होकर 10 साल का 15 साल का 20 साल का हो गया, माँ बाप के ऊपर उतना निर्भर नहीं रहता हो। इसलिए ज्ञानी लोग 15-20 साल के लड़के के समान है और भक्त लोग एक 6 महीने 1 साल के बच्चे के समान है, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं। क्योंकि वो लोग वो बच्चा भी शरण लेता है माँ बाप की, माँ बाप को प्रेम भी होता है उसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर पूरा निर्भर है। इस तरह हम लोग जितना भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे उतना भगवान का आश्रय का अनुभव हमें होगा। अभी वो बोल रही है, उत्तरा बोलेगी कि मुझे बचाने की मुझे बचने की इच्छा नहीं है, बचूंगी तो ठीक है लेकिन बचा भी नहीं, लेकिन बच्चे को बचा दीजिए, क्योंकि नहीं तो वंश जारी नहीं रहेगा, ऐसे वो प्रार्थना करती है। तो प्रभा जी उत्तरा की गुणगान किया है उधर 10वां श्लोक के लास्ट लाइन पढ़िए।
उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी, इस वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी।
देखिए उत्तरा और अश्वत्थामा दोनों को तुलना करके आप देखिए, अभी अश्वत्थामा पहले 5 बच्चों को मारा था, अभी ये शिशु पांडव शिशु के अंतिम शिशु को भी मारने आ रहा है। नृशंस है, क्रूर व्यक्ति है, खल है, वो द्वेषी है। इसके विरुद्ध उत्तरा देखिए, वो सोच रहे है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मरना है तो, लेकिन बच्चे भगवान का भक्त है, वो भक्ति में रहे और दुनिया का शासन करे तो मैं गुजरने से कुछ समस्या नहीं है, ऐसे सोच रही है। तो परजीवी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन अश्वत्थामा परजीवों को दुख दे रहा है, मार रहा है। समझ में आ रहा है आपको दोनों में फर्क, ऐसे बताते हैं। तब अभी तब सब लोगों ने देखा कि एक तेजोमय ब्रह्मास्त्र है, इतना तेजी से आ रहा था वो, लेकिन दो ब्रह्मास्त्र था, एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा की योनि की ओर गया, दूसरा ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों को मारने के लिए आया। अश्वत्थामा ने क्या सोचा, अभी तक मैं जिंदा हूं इसलिए लास्ट मेरे पास जो भी शक्ति है ब्रह्मास्त्र को डालकर 5 पांडवों को भी मार दूंगा, बच्चे को भी मार दूंगा ऐसे। तो भगवान ने देखा कि पांडव लोग अपने आयुध को उठाकर ब्रह्मास्त्र के साथ लड़ाई करने के लिए समय भी नहीं था, इतना कम समय में वो कर नहीं पाते थे। तो भगवान ने समझ गया कि पांडव लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, सब जलकर राख हो जाएंगे, इसलिए मैं बचाता हूं उनको। अपने हाथ में चक्र लेकर उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया उन्होंने। किस ब्रह्मास्त्र को? पांडवों की ओर आ रहा था, उसको काट दिया। तब कुरुक्षेत्र युद्ध लगभग हो चुका था, लेकिन पूरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक अश्वत्थामा जिंदा है ना। तो कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पहले क्या भगवान आयुध उठा सकते हैं क्या? नहीं। फिर भी क्यों उठाया? प्रभु जी बोलते हैं भगवान ने सोचा कि मैं नैतिकवादी करके नाम यश मुझे मिलेगा, लेकिन उसके बदले क्या होगा, पंच पांडव मर जाएंगे। अगर मैं नैतिकता को त्याग दूंगा तो पंच पांडवों को बचा दूंगा, अभी मैं भक्तवत्सल नाम से पुकारा जाऊंगा। तो आपको क्या चाहिए? भक्तवत्सल नाम चाहिए, नहीं तो नैतिक व्यक्ति। अच्छा, पक्का एकदम नेक और नैतिक व्यक्ति वो चाहिए भगवान को। दोनों में क्या पसंद था भगवान को? भक्तवत्सल, भक्तों की जिंदा बचाना मेरा काम है, मैं उनको पांडवों को बचा दूंगा, दुनिया जो भी बोलना चाहे, धिक्कार भी दे हमको, कुछ समस्या नहीं, ऐसे भगवान ने सोचा। ये भगवान की महानता है, तो हम लोग भूलना नहीं चाहिए इसको। इसको वृत्ति अवश्यता बोलते हैं, भक्तों के दास बनते हैं भगवान, ऐसे वही बताते हैं प्रभा जी इधर। तब उन्होंने इधर देखे, पिक्चर में दिखाया गया ना, भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और गोल गोल घूमते हुए हाथ में गदा को लेकर ऐसे घुमा रहे थे, गदा को भी ब्रह्मास्त्र निकट ही नहीं आ पाया, तो उनके गर्भ को बचा दिया। तो इधर से चालू हो रहा है महाराज, ये महारानी कुंती का प्रार्थनाएं चालू होने वाला है अभी। ये 16वां श्लोक का अनुवाद पढ़िए। मामंस्ताह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युत जयिदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति अजः। भगवान ही सृजति, वही सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वही मारते हैं, भगवान की माया ही सब करती है भगवान के आदेशानुसार। मामंस्ताह्येतदाश्चर्यं, अरे ब्राह्मणों आप लोग आश्चर्य मत करो, भगवान ने कैसे कैसे ऐसे दो दो ब्रह्मास्त्र को पराजित कर दिया और नहीं तो अंदर योनि के अंदर जाकर बच्चे को बचाया। ये सब अद्भुत चीजें हैं, साधारण इंसान कर नहीं पाएगा कभी भी, लेकिन आप आश्चर्य मत करो बोलते हैं। सर्वाश्चर्यमयेच्युते, भगवान अच्युत सब तरह के अद्भुत चीजों को कर सकते हैं। बढ़िया अनुमान।
हे ब्राह्मणों, इसे गुहे तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं।
करेक्ट। और एक 17वां पढ़ लीजिए।
इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की एक भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया।
हाँ, अभी कृष्ण वापस बैठ गए रथ में, निकलने वाले हैं अभी द्वारका के लिए। तब कुंती महारानी आ पहुंची और वो प्रार्थना करना चाह रही थी। वो अभी कृष्ण के अवलोकन, कृष्ण के दर्शन करने की इधर से चालू कर रही है। उनकी अलग अलग सुंदर प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की। इन प्रार्थनाओं को महान भक्तों ने अनेक बार उच्चारण किया है और अनेक लोग याद किया है इन श्लोकों को। ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, बहुत दिव्य है भगवान कृष्ण के गुणगान में। हर एक लोग स्पेशल है, हम क्या करेंगे, एक एक श्लोक बोलकर दो दो लाइन बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो खास श्लोक है उधर थोड़ा समय ज्यादा बिताएंगे। पहला श्लोक बोल रही है कुंती, सब लोग पीछे बोलिए, नमस्ते पुरुषम तु आद्यम। वो उन्होंने बोला कि नमस्ते पुरुषम, हे कृष्ण मैं आपका नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप पुरुष हो। तो भगवान ने बोला मैं ही नहीं पुरुष, अनेक पुरुष इस दुनिया में हैं, वो भी पुरुष हैं। आद्यम बोल रहे हैं आप, आदि पुरुष हो। भगवान बोलते हैं जीव भी आदि है, जीव का मरण नहीं कभी नहीं होता, जीव का जन्म भी होता नहीं, ना जाए थे मृते वा कदाचन। तब आगे बोलती है ईश्वरम प्रकृते परम। वो बोल रहे हैं कि आप भी आदि हैं, जीव भी आदि है, लेकिन आप जीव का भी ईश्वर हो, आप ऐसे बोलते हैं। तब भगवान बोलते हैं इंद्र भी ईश्वर है, ब्रह्मा भी ईश्वर है, शिव जी को भी कभी ईश्वर नाम से पुकारा जाता है। लेकिन बोलती है प्रकृते परम का मतलब है आप इस दुनिया का ईश्वर नहीं हो, आप किधर का ईश्वर हो, यह लोक परलोक दोनों से ऊपर है आप, सबके ईश्वर हो आप। जैसे बोलते हैं ना अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप ईश्वर परम हो, आपसे आपके समान कोई नहीं, बढ़कर कोई नहीं, इस तरह को घोषणा करती है। और बोलते हैं अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। देखिए आप उत्तरा के गर्भ के अंदर भी चले गए थे उसको बचाने के लिए बच्चे को, अभी रथ में भी बैठे थे आप, अंतर बहिर अवस्थितम। ऐसा नहीं कि कृष्ण रथ में बैठे थे उनको उधर रथ छोड़कर भागना पड़ा, ऐसा नहीं, एक कृष्ण बैठे हैं रथ में, दूसरा कृष्ण चले गए योनि के अंदर। इस तरह भगवान अपने आप को कितने भी नंबर में विस्तारित करना हो कर सकते हैं, ये बात है। माया जब निकाच्छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो बोल रहे भगवान ने पूछा कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम आप बोलती हो, मुझे कोई देख नहीं सकता है, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो मुझे, भाई से तो कर्ण देख रहा है, दुर्योधन देख रहा है, दुशासन भी देख रहा है, मुझे शकुनी देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि नहीं। वो बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत बोलो, वो लोग ना देखना देखना ही नहीं है। क्यों ऐसा है, ये बोलती है माया जब निकाच्छन्न, वो बोलती है कि एक माया का आवरण के कारण वो लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं। तो भगवान उनको पूछते हैं ऐसा है क्या, उसका मतलब है मैं माया के अधीनता में आ गया हूं क्या, ऐसे भगवान पूछते हैं। तब वो बोलती है ऐसा नहीं है, आप कैसे माधा माया के अंडर आओगे, लेकिन आप तो सूर्य जैसे चमक रहे हैं, लेकिन एक बादल आ गया है जो हमारे आंखों को ढक रहा है, आपको कुछ माया ढक नहीं सकती है, एक पर्दा आ गया है आपके और जीवों के बीच में, तो जीव देख नहीं पा रहा है आपको। और वो एक उदाहरण दे रही है, एक बार हमारे जन्माष्टमी के कार्यक्रम में ये कुछ माता जीवों का ग्रुप, वो लोग भरतनाट्यम कर रहे थे, तो भरतनाट्यम में उन्होंने दशावतार किया, दशावतार का लीला किया, तो जो एक नया व्यक्ति आया था देख रहा था, तो माता नाच रही है ताली बजा रहा था, अच्छा लगा इसको, लेकिन वो माता जी ये नरसिंह देव का रूप प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या क्या ऐसे बोल ऐसे क्या उन्होंने, तो इसको बड़ा आश्चर्य बोला कि अभी माता शांति से नाच रही थी ऐसे आंख इतना बड़ा क्यों हो गया, उसको समझ में नहीं आया उसको। तो उसके बाद कृष्ण के अवतार जब दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या ऐसे ऐसे किया, ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे चल रही है आगे सामने पीछे, अभी बोल रहा अभी शांत हो गई अभी ऐसे बोलता हो, उसका मालूम नहीं वो अभिनय जो कर रही है उस अभिनय के पीछे मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, दशावतार मालूम होना चाहिए, तब समझेंगे, है ना। तो ये एक बार एक इसमें देखा हमने स्टेज में द्रौपदी की वस्त्र हरण दिखा रहे हैं वो लोग, लेकिन बोला नहीं कुछ, दुशासन दो माताएं हैं, एक माता जी द्रौपदी है, दूसरी माता जी पुरुष जैसे ड्रेस किया है, तो ऐसा करती है ऐसा कर रहा, और वो क्या कर रहे हैं, नहीं 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 बोल रहे है, हे कृष्णा हे गोविंदा बोल रही है। तो अगर आपको ये लीला पहले से मालूम है तो आप तुरंत बोलेंगे ये द्रौपदी है और ये दुशासन है, तो अगर अभिनय तब आप जानोगे जब लीला आपको मालूम है पहले। तो ये बोल रही है कृष्ण को नटो नाट्यधरो यथा, जैसे भरतनाट्यम करने वाले ड्रामा करने वाले जब करते हैं स्टेज में, अगर मूर्ख व्यक्ति को उनकी लीलाओं के बारे में मालूम नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा उसको, इस तरह साधारण जीव देहात्म बुद्धि से भटक रहे हैं वो आपको कैसे समझ पाएंगे, आपकी लीला तो अद्भुत लीलाएं हैं, शुद्ध भक्त ही समझते हैं आपकी लीलाओं को, बाकी लोग नहीं समझेंगे। इसलिए सब जीव जब जो को आपके ऊपर गलतफहमी आपके संबंध में गलतफहमी हो गया है उनमें समझ नहीं पा रहे हैं वो, इसलिए बोल रहे आगे के श्लोक में तथा परमहंसानाम मुने नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कदम पश्ये महि स्त्रियः। वो बोल रहे हैं कि हे भगवान आपको कौन जान सकता है जो परमहंस है, शुद्ध चित्त वाले होते हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे ही लोग भक्तियों के द्वारा आपको प्राप्त करते हैं। मेरे जैसे एक शूद्र नारी जिसको शास्त्र में पांडित्यता नहीं है और आपके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, तो मैं कैसे जान सकती हूँ? मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, ऐसे वो सोच रही है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के लिए एक शीर्षक दिया उनके बुक किताब में, मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन, ऐसे दिया उन्होंने। क्यों बोला मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन? वो सबसे बुद्धिमान है कौन? कुंती। क्यों बोला? क्योंकि वो बोल रही है कि मैं आपको देखने के लिए अयोग्य हूँ। जो असली भक्त है वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा? मैं बहुत योग्य हूँ भगवान को देखने के लिए, ऐसे बोलेगा हा? मैं अयोग्य हूँ, बाकी लोग सब योग्य हैं, बड़े हैं, महान हैं। तो ऐसे वो बोल रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान पूछ रहे हैं उनको, ठीक है तुम बोल रहे हो कि परमहंस मुझे जानते हैं, तो परमहंस क्या जानते हैं बताओ, भगवान पूछते हैं। तब जवाब देती है, वो जानते हैं कि आप कृष्ण हो। तो कुछ लोग बोलेंगे, मेरे क्लास में भी एक लड़का है, उसका नाम क्या है? कृष्ण है, बोलेगा ना कोई। तो इसलिए क्या बोलते हैं? वासुदेवाय। अरे वासुदेव के तो मथुरा छोड़कर चले गए नंद गोकुल में, उधर नंद बाबा और यशोदा के सुपुत्र बनकर लीलाएं दिखाया उनको। इस तरह प्रभु जी बोलते हैं, भगवान के संबंध में वैष्णव लोगों के पास पूरा पता है, एड्रेस है भगवान की। अगर आप कॉलेज में जाओगे, फॉर्म भर्ती करना होता है ना, पहले आपको खुद का नाम पूछेंगे, उसके बाद फादर्स नेम पूछेंगे ना, पिता का नाम क्या, उसके बाद एड्रेस पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे, ऐसे। तो हमारे पास सब कुछ है। तो आपको भी नाम दिया है मेरा राधेश्याम दास, तो पिता का नाम पूछेंगे, भगवान कृष्ण का नाम है, एड्रेस क्या है, वो गोलोक वृंदावन है, वृंदावन है, मथुरा है, ऐसे। फोन नंबर क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह ये फोन नंबर लगाएंगे तो नाम जब जब कर सब एड्रेस वगैरह मिल जाएगा उनको, है ना, कुछ भी चाहिए। इस तरह प्रभु जी बोलते हैं कि मायावादी लोग जो हैं उनको इतने विवरण मालूम नहीं है भगवान के बारे में, वो जानते भी नहीं है भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह वो वर्णन देती है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। अभी बोल रही है भगवान के सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रही है। देखिए पहले उन्होंने बोल दिया भगवान का एड्रेस, धाम बोल दिया, धाम का नाम ले लिया, अभी आगे जाकर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही है। नमः पंकजनाभाय, आपके नाभि पंकजनाभि है, क्योंकि आपके नाभि से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, और आप पंकज का माला पहने हो ना, और आपके आंखें भी कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, और आपके श्री चरण भी पंकज जैसा है। कोई पूछेगा अरे बार बार कमल का नाम दिया गया है, कारण क्या है? कमल सबसे एकदम मुलायम एक फूल है, और सुगंधी फूल भी है, और कमल के अंदर शहद भी है, सबसे मोटा फूल भी है, वो जगत प्रसिद्ध है, तो एकदम सॉफ्ट होता है कमल, इसलिए उनको तुलना किया है कमल से, नील कमल, भगवान नील कमल जैसे हैं। और 23वां में बोलती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं सह सह सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। अनुवाद पढ़े।
हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है।
ये बोलती है, आप देवकी को भी कंस के कारागर से मुक्त किया, आपके जन्म होने के बाद वो बाहर छोड़ दिया कंस ने उनको, देवकी वसुदेव को, है ना, क्योंकि सातवां या आठवां पुत्र आने के बाद पुत्री आई, है ना, पुत्री के दोनों पांव को पकड़कर ऐसे एक पत्थर के ऊपर उसको सर को मारकर फोड़, जैसे हम लोग को नारियल को फोड़ते हैं ना, ऐसे फोड़ने की योजना था उसका, ऐसे उठाया वो ऊपर ही उड़ गई वो, आसमान में 10 हाथ वाले दुर्गा बने, हाथ में त्रिशूल था, हंस रही थी, हंस रही थी वो, बोला कि अरे मूर्ख कंस, तुमको मारने वाले बच्चे कहीं और जन्म ले लिया ऑलरेडी पहले से, हम तुमको मालूम नहीं, ऐसे बोलती है। लेकिन बोलने के पहले क्या हुआ, कंस ने देखा कि हे देवकी, तुमका तुम्हारा आठवां पुत्र होगा करके बोला, पुत्री हुआ क्या ये, क्या देवता लोग भी झूठ बोल दिया क्या, आकाशवाणी में क्या बोला था, आठवां क्या होगा, पुत्र होगा, पुत्री हो गई, लगता है कि उनकी बात गलत निकला है, उसका मतलब वो लोग कुछ झूठ बोल दिया होगा, ऐसे सोचा। लेकिन बाद में भी दुर्गा की बात सुनने के बाद समझ गया अभी, तब वो गिड़गिड़ाने लगा, बोला देवकी वसुदेव को, अरे आपके गोद में दुर्गा पैदा हुई है, मतलब आप लोग साधारण लोग नहीं है, वो पांव पकड़ा जंजीरों को निकाल दिया, बोला अभी आराम करो आप लोग, आपको जेल में नहीं रहना है। तो इस तरह भगवान आठवें पुत्र के रूप में जब अवतरित हुए तो उनको मुक्त करा दिया माँ बाप को, राइट है ना, दोनों को मुक्त करा दिया। इतना ही नहीं, पंच पांडवों को भी विविध तरह के विपदों से भगवान ने बचाया, वो विपद क्या क्या है अभी आगे के श्लोक में बताने वाली है वो, हाँ इस तरह आपने बचाया है हमको, ऐसे बता रही है। और बताते हैं कि देवकी को एक ही कतरा था, लेकिन मेरे जीवन में अनेक कतरा आए, हाँ ऐसे बता रही है वो। तो क्योंकि देवकी तो जेल में थी, अपने पति भी था उनको सुरक्षा देने के लिए, लेकिन मेरे पति गुजर गए थे, कौन बोल रही है, कुंती, हाँ मैं अभी विधवा बन गई, इसलिए आपने हम लोगों को ज्यादा ही सहारा दिया, आपने सपोर्ट दिया, क्योंकि मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने बालक थे अभी, अभी उनको बचपन से आपने सुरक्षा प्रदान किया है, अभी देवकी के लिए वसुदेव थे पुरुष, तो उनके उनके आश्रय होने के कारण उसको उतना ज्यादा चिंता नहीं है, इसलिए आपने मुझे ज्यादा सपोर्ट दिया, ऐसे बोलती है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृढ़े मृढ़े नेक महारतास्त्र तो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः। इधर एक लिस्ट देती है क्या क्या किया कौरवों ने, भीम को विष पिलाया दुर्योधन ने, एक एक दिन की बात है जब कौरव पांडव सब छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे लड़के थे, सब लोगों को खेलने कूदने के लिए सब लोगों को भेजा था धृतराष्ट्र ने एक बड़े महल में, वो महल नदी के निकट ही था, तो ये बच्चे लोग जाते थे नदी में खेलने के लिए और पानी में खेलने के लिए और नहाने के लिए। तब भीम एक एक कौरव बच्चा को पकड़ कर ऐसे आसमान में फेंकता था, तो ऊपर उड़ देते आकर पानी में गिरते थे, वो कुछ होता नहीं था उनको, लेकिन उसको देखकर ईर्ष्या हो गया कौन, दुर्योधन और दुशासन, अरे कितना शक्ति है, ये तो हाथी जैसा है, मोटा है, बहुत शक्तिशाली है, ये बड़ा होगा तो पता नहीं क्या करेगा हम लोगों को, तो इसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसे वो लोगों ने सोचा था। दोपहर के समय सब लंच खाने के लिए आए, नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आभूषण पहनकर आए, तो दुर्योधन निकट ही बैठ गया भीम के, और उसने लड्डू बनाया था, किसका, विष से मिलाया हुआ लड्डू बनाया था, और बोला कि भीम मैं तुमको खिलाना चाहता हूँ लड्डू, अभी लोगे क्या। भीम बोला क्यों नहीं, एक एक करके खिला दिया उसको, इतने दर्जनों लड्डू खिलाया, वो काता गया, खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ भीम को, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, और शाम तक कुछ नहीं हुआ भीम को। तो शाम तक ये लोग दोनों देख रहे थे दूर से, दुशासन दुर्योधन, अरे लगता कि मरेगा नहीं है, इतना शक्ति है इसके शरीर में। लेकिन शाम को चक्कर आ गया, किसको, हाँ विष गया ना अंदर, चक्कर आ गया उसको, तो ये लोग एक बड़ा रस्सी लेकर, बड़े पत्थर लेकर, जब वो नीचे गिर पड़ा बेहोश होकर, बड़ा पत्थर बांध दिया, उनको पानी में डाल दिया, नीचे जाकर सर्पों ने काटा उनको, सर्प के जहर और शरीर का जहर मिट गया, तब सर्पों को पकड़ पकड़ कर मारा उसने पत्थरों में, तब सर्प जाकर शिकायत किया, उनके लीडर को, वासुकी को। तब वासुकी को पता चला कि भीम है, उनका संबंध है, पारिवारिक संबंध है कुंती के परिवार के साथ, इसलिए उनको स्वागत करके मेहमान के रूप में लिया और ऐसे एक रस दिया उनको पीने के लिए। वो लोग भी थोड़ा 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 पीते थे जैसे हम लोग टॉनिक लेते हैं ऐसे, तो ये ऐसे चार पांच गड़ा पी लिया है, गाढ़ा 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 गाढ़ा। वो लोग का आश्चर्य, इतना पी सकता है कोई है। लेकिन पीने के बाद इसको थकावट हो गया तो लेट गया, तो ऐसे लेट कर तीन चार चार दिन उठा ही नहीं। तीन चार दिन वो जो द्रव अंदर गया ना पूरा पच गया, अच्छे तरीके से उठा, उसको 10,000 हाथी का शक्ति मिल गया। इससे क्या पता चलता है, भगवान के भक्त को अगर कोई नुकसान करता है तो उस व्यक्त उस भक्त का ही शक्ति बढ़ जाता है। जैसे जैसे जो चंदन का पेड़ होता है उसको कुलाड़ी लेकर काटो तो सुगंध और बढ़ जाता है उसका, है कि नहीं। तो अभी एक का बोला मैंने, भीम का, ऐसे आप देखेंगे ये दुर्योधन और कंपनी क्या क्या किया उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में भेज कर उनको जिंदा चलाने की योजना किया। वो बोल रही है वो विशान महाग्ने, और जंगल में हिडिंबा राक्षस मारने के लिए आया, ऐसे असत सभा में द्रौपदी को बीच में लाकर वस्त्र हरण करने के लिए प्रयत्न किया गया, और उसके बाद उनको धोखाबाजी करके द्यूत क्रीड़ा के द्वारा उनको जंगल में 12 साल जाने के लिए वनवास में भेज दिया। मृडे, मृडे का मतलब है बार बार, अनेक महारथास्त्र, तो अनेक विविध तरह के महारथी लोग, बहुत शक्तिशाली महारथी लोग आकर वो युद्ध भूमि में आकर, जैसे थिमंगल जैसे थे, कौरव सैन्य सागरम बोलते हैं ना उसको, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये सब बड़े बड़े महारथी हैं, इनको पराजित करना आसान नहीं है। तो ऐसे लोग आकर मेरे बच्चों को, पांडवों को मारने के लिए आए, लेकिन मेरे बच्चे बच गए आपके कृपा से, ऐसे बता रहे हैं। अभी द्रोणी, द्रोणी कौन है? अश्वत्थामा है, द्रोण का पुत्र है। अभी द्रोणी आया है, क्या कर रहा है? एक एक ब्रह्मास्त्र को चला रहा है यह परीक्षित को मारने के लिए। तो आपने उस शिशु को भी बचा दिया आपने, इस तरह वो देखिए कुंती से सीखने लायक चीज क्या है, कृतज्ञता। हमारे जीवन में भी मुड़कर देखना चाहिए कि भगवान ने हमारे कितना क्या क्या किया है, हमको भक्ति में जोड़ा है, भक्तों के साथ जोड़ा है, इतना अच्छा मौका दिया है। तो हमें कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, भक्तों को भी, भगवान को भी, दोनों को। विपद संत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। बोलती है कि हे भगवान, उन विपदों के बीच में आप हमेशा काम्यक वन में आते थे, वृषकाय वन में आते थे, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले शांति दूत बनकर जाकर आकर हमको बताया, हमारे बीच में रहते थे, हमारे साथ खाते थे, मेरे पांडवों के साथ साथ रहते थे, भाई भाई जैसे हैं। लेकिन अभी युद्ध हो गया, मेरे बेटे राजा बन गए, हम एक अच्छा परिस्थिति में हमको रखकर अभी आप निकल रहे हो, क्योंकि लग रहा है मुझे जिस भक्त के जीवन में तकलीफ है, अगर वो भक्त आपका स्मरण करेंगे तो उधर आ जाते हो आप। अगर तकलीफ ही नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, तो भक्त लोग आपका स्मरण नहीं करते हैं तो आप निकल जाते हो उधर से। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा है कि आप तकलीफ दे दो हमको, और उसको सुलझाने के लिए हमारे साथ ही ठहर जाओ, इसलिए तकलीफों को मांग रही है वो ऐसे। तो मैं एक छोटा कहानी बोला, सत्य कहानी क्या है, एक छोटा बच्चा था, लड़का था छोटा, वो एक दिन क्रिकेट खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, उसके घुटनी में बॉल, जो कारक बॉल होता है ना, उसको बॉलिंग करते समय फट करके जब इधर टुकरा गया तो तुरंत तो खून बहने लगा, तुरंत मित्र लोग डर गए, उसको उठा कर लेके गए अस्पताल में। अस्पताल में पहुंचते ही उधर एक नर्स थी, तो नर्स इनको ये किया, टिंजर लेकर उसको क्लीन करके उसको मलम पट्टी वगैरह लगाया, लेकिन मलम पट्टी लगाते लगाते मीठे मीठे बात किया वो नर्स ने, तो ये छोटा बच्चा जो था, इसकी माँ गुजर गई थी और ये अनाथ था, सिर्फ पिताजी थे, माता नहीं थे उसके, घर में अकेला था, पिताजी को ही देखता था वो। लेकिन अभी ये जो नर्स जो मलम पट्टी लगा रही थी मीठे मीठे बात करते करते, तुरंत उसको किसका याद आ गया, माँ का याद आ गया, उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। वो माँ का प्यार, कितना प्यार देती थी माँ, अभी निकल गई है, ऐसे माँ का याद आया उसको। तो आंसू पोंछ लिया, वो घर वापस लौटा, उसको ठीक हो गया। अभी ठीक होने के बाद एक दो हफ्ते के बाद वापस खेलना चालू मित्रों के साथ। अभी दो तीन महीना होने के बाद जब ऐसे खेल रहा था, मित्रों को बोला कि आज भी एक गांव हो जाएगा मेरे घुटने में तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसे बोला उसने। क्यों मालूम है आपको? क्यों उसको अभी गांव चाहिए? उनको पूछेंगे, आपको याद है, बोलेंगे आप उनको अभी गांव क्यों चाहिए उनको, माइक दीजिए उनको।
उसको पहले माँ का याद आ गया,
माँ का याद आया था पहले, अभी दूसरी बार उनको घुटनी में और एक बार गांव क्यों चाहिए,
क्योंकि वो नर्स।
हाँ, अगर ये गांव हो जाएगा तो उसको अस्पताल में लेके जाएंगे, उधर कौन रहेंगे उधर। हाँ, वो बैंडेज करेगी, वो तुरंत उसको या क्या याद आएगा, माँ का प्यार क्या देगा। हरी बोल, सही बता दिया आपने। इसी तरह से अभी कुंती महारानी वही बात बोल रही है, जब हमको तकलीफ होता है, जैसे नर्स रही इस बच्चे के साथ, इस तरह कृष्ण रहते हैं किसके साथ, पांडवों के साथ। अगर तकलीफ खत्म हो गया तो कृष्ण क्या करते हैं, निकल जाते हैं द्वारका के लिए। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, तकलीफ दो हमको ताकि आप हमारे बीच में ही रहोगे। आप समझ में आ रहा है आपको ये उदाहरण? तो जिस तरह वो लड़का जो था उसको माँ का प्यार चाहिए था, इसी तरह पांडवों को कृष्ण की प्यार चाहिए थी। तो कुंती रो रही थी कि आप हमको छोड़कर मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए, ऐसे वो बोल रही है। ऐसे इसलिए वो मांग रही है कि आप तकलीफ भी दो हमको। देखिए भगवान बोलते हैं पांडवों को, देखो ऐसा नहीं कि मेरे भक्तों को तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ होगा, लेकिन अगर मेरा स्मरण करते हैं तो वो तकलीफों को सुलझाने के लिए मैं आकर मदद करूंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। जैसे अभी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, लेकिन भगवान उनके सारथी बने क्योंकि अर्जुन ने उनका स्मरण किया। तो हम स्मरण करके भगवान को अपने हृदय में बुला सकते हैं और वो हमें शक्ति देंगे सब तरह के तकलीफों को सहन करने के लिए। जैसे एक छोटी लड़की थी दक्षिण भारत में, मेडिकल का ये कॉम्पिटिटिव नीट करके एक एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा था उन्होंने, तो उनको 12वीं कक्षा में 94% मिला, लेकिन नीट एग्जाम में फेल हो गई। तो सब फ्रेंड्स उसको पूछने लगी, अरे फेल हो गई क्या, फेल हो गई क्या, ऐसे कैसे फेल हुई, तुमने 94% लिया था उधर, पढ़ा नहीं क्या, ऐसे पूछा सब लोग। उसको इतना दुखदायक हो गया तो आत्महत्या कर लिया, कुछ चूहे का विष खरीद कर उसको खा लिया और मर गई वो। आजकल विद्यार्थी एकेडमिक प्रेशर के कारण छोटे छोटे चीज को लेकर वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं आजकल, लेकिन पांडवों के जीवन में कितना तकलीफ हुआ है ना, उनके पत्नी का अपमान हुआ, जंगल भगाए गए, विष पिलाया गया। वो लोग क्यों आत्महत्या नहीं किया, क्योंकि कृष्ण साथ में थे उनके साथ। जब तक कृष्ण है, जूस है, जूस के साथ हमें तकलीफ नहीं होता है। जैसे अगर आपके घुटनी में एक ये लगा है, क्या बोलते हैं, बैंडेड लगाया है, अगले दिन निकालो कर 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 ऐसे करते हुए आपको बाल भी निकलेगा साथ साथ, दर्द होगा कि नहीं, दर्द होगा, लेकिन थोड़ा पानी डाल दो अंदर, ऐसे पानी डालकर निकालो, स्मूथली आ जाएगा वो। इस तरह हमारे हृदय में कृष्ण का जूस आ गया तो कर 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 तकलीफ नहीं होगा हमको अनासक्ति कर प्राप्त करने में। हम अनासक्ति आसानी से आ जाता है, जैसे आपने पेरू देखा ना, पीला पेरू ऐसा आ जाता है और हरा पेरू गोल गोल घुमा कर निकालना पड़ता है। तो इस तरह हम भी कृष्ण की प्राप्ति होकर इस दुनियादारी चीजों से अनासक्ति आसानी से हो जाता है, कृष्ण के बिना बहुत मुश्किल है। जन्मैश्वर्य सुदर्शी विरेदमान मदपुमान नैवार्हत्य विदातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। पढ़िए।
हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाते।
तो ये सब बोल दिया मैं। बहुत लंबा था इसलिए मैं बोल दिया आपको। कृष्ण को कौन देख सकता है, परमहंसा नाम। ये बताया ना करेक्ट। ये बोल रही है कि वसुदेव से ज्यादा देवकी भाग्यशाली है, बोलती है। क्यों? क्योंकि देवकी के गर्भ में भगवान अवतरित हुए ऐसे। और बोलती है देवकी से भी नंद बाबा और भाग्यशाली हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देवकी ने जन्म दिया कृष्ण को, लेकिन लीला नहीं देख पाई है ना। लीला किधर दिखाया उन्होंने? नंद गोकुलम में। इसलिए नंद बाबा ज्यादा भाग्यशाली है। बाद में बोलती है नंद बाबा से भी बढ़कर यशोदा और भाग्यशाली है, बोला। क्यों? दूध पिला पाया उन्होंने, अपने स्तनपान कराया कृष्ण को। इसलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? यशोदा। ऐसे बोलती है वो, ऐसे बोलती है। करेक्ट, ये सब बोल दिया है। जय श्री राधा कुंज बिहारी की जय। ये सब दिखा दिया आपको है ना, बोल दिया ना मैं सब। ईशान महाग्ने प्रदर्शन दास अश्वत ठीक है। देखिए वो व्यक्ति, देखिए, देखा आपने? तो उसको क्या लग रहा है उसको? हाँ, मैं भगवान हूं, मैं बड़ा हूं। चार चीज बोलते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री इनमें होता है। तो हम इस श्लोक से अगले सत्र में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय थोड़ा लंबा अध्याय है ये, इसको अगले इसमें पूरा कर देंगे। 52 श्लोक है इसमें, हम अभी तक 27 तक आ गए। जनरली एक एक क्लास में हम 25 to 30 पूरा कर पाएंगे हम, लेकिन आज हमने पिछले अध्याय को भी पूरा किया हमने, इसलिए अगले सत्र में इस बाकी के अध्याय को हम पूरा कर देंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्लोक क्रमांक क्या है याद रखिए आप, नंबर क्या है? 26 है ना? ठीक है। शैल प्रभुपाद की।